हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ भट्ट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्री निवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्री निवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदिश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त भक्ति वृंद की। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री श्री गौर निताय की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। समवेद भक्त वृंद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की। श्रील वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है और हम वृंदावन धाम में वृंदावन दास ठाकुर के आविर्भाव का दिवस मना रहे हैं। तो ये बहुत विशेष योग बनाया है, वृंदावन का योग है ये, कि वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव वृंदावन धाम में हम जो है मना रहे हैं। और मनाते कैसे हैं उनके विषय में कुछ है? सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं है? तो यही जो है उनका आविर्भाव दिवस मनाना है। तो इनके विषय में गौर गणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है। गौर गणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है 109 संख्या का श्लोक है। वेद व्यासो या एव आसीत दासो वृंदावनो धुना सखा यह कुसुमा पीठ कार्य तस्तम समाविशत। तो इसमें यह बताया गया है कि ब्रज लीला में या श्री कृष्ण की लीला में जब द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तो उस समय जो वेद व्यास जी थे तो वे ही गौर लीला में कौन है? वृंदावन दास ठाकुर। तो व्यास जी है? तो वेद व्यास जी जो है जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की तो वे ही व्यास जी वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए गौर लीला में। सखा यह कुसुमा पीड़ा कार्यत स्तम समाविशत। और कुसुमा पीठ का जो सखा था वो भी किसी कार्य विशेष से इनमें प्रविष्ट हुआ। तो दो आत्माएं हैं वृंदावन दास ठाकुर के शरीर में, दो आत्माएं हैं। एक आत्मा तो वेद व्यास जी की हैं और दूसरी आत्मा है कुसुमा पीठ नाम का सखा। कुसुमा पीठ सखा जो है ये श्री कृष्ण के जो अल्प वयस्क सखाओं में से एक हैं। कुछ सखा सम वयस्क हैं यानी बराबर आयु के हैं और कुछ सखा अल्प वयस्क हैं यानी कम आयु के हैं। तो श्री कृष्ण के साथ में जो है कम आयु के सखाओं में कुसुमा पीठ नाम का एक सखा है। तो वृंदावन दास ठाकुर में जो है व्यास जी का भी भाव था, व्यास जी का भाव था। तो उसमें क्या है, उनके अंदर रचना करने की शक्ति थी, रचना करने की विशेष शक्ति थी। और कुसुमा पीठ सखा का भी भाव था, वो क्या था? सखा भाव, सखा भाव है ना। तो इन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना की। तो चैतन्य भागवत ग्रंथ की जो रचना की वृंदावन दास ठाकुर ने, ये उसी प्रकार से रचना की जैसे कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। तो यही जो है व्यास जी थे पिछले जन्म में, तो श्रीमद् भागवत की रचना की। तो श्रीमद् भागवत की रचना की तो उसके पहले कुछ उनसे त्रुटि हुई थी कि उन्होंने कुछ ऐसे भी ग्रंथ लिखे महाभारत जैसे जिनमें धर्म अर्थ काम का ज़्यादा वर्णन है और भक्ति का कम वर्णन है। तो नारद जी ने उनकी ये कमी बतलाई और ये कहा कि एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान की भक्ति का ही वर्णन हो। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी। तो नारद जी के ही शिष्य होने के कारण इस बार व्यास जी जब वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए तो और कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं, केवल एक ही ग्रंथ लिखा जिसमें केवल भक्ति का वर्णन हो। और वो कौन सा ग्रंथ है? चैतन्य भागवत ना। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद भागवत की रचना की और दशम स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है ना। तो वही व्यास जी भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य की लीला में, वही श्री कृष्ण जब चैतन्य के रूप में प्रकट हुए तो उनकी लीला का वर्णन करने के लिए वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए और दूसरे ग्रंथ लिखे ही नहीं। तो वृंदावन दास ठाकुर ने दूसरे ग्रंथ नहीं लिखे, एकमात्र चैतन्य भागवत चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का। और अगर कुछ लिखे, अगर माना जाता है कुछ लिखे ग्रंथ, तो इसी दिशा में लिखे। अब धर्म अर्थ काम का जो है कुछ है वर्णन नहीं किया, क्योंकि कलयुग में लोगों की जो आयु है वो बहुत थोड़ी है। प्रायणाल पायुषा सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदास मंद मतिहा मंद भाग्य हो पद्रुता। कलयुग में लोगों की प्रायः अल्प आयु होगी, थोड़ी आयु के हो गए लोग, है ना। तो फिर महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करने की क्या आवश्यकता है। अगर थोड़ी आयु है तो फिर ज़्यादा अच्छा यह है कि शॉर्ट कट में जो है पूरा जो है संदेश दिया जाए। तो महाभारत का कोई जो है 1,00,000 श्लोकों का जब कम से कम 10 बार अनुशीलन करे तब वो जो है कृष्ण की भक्ति को में आ पाएगा, कृष्ण की भक्ति के निष्कर्ष में आ पाएगा। तो इतना समय कहाँ है किसके पास। महाभारत को 1 बार पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है ना, फिर 10 बार पढ़े कोई व्यक्ति सुने तब कहीं कृष्ण की भक्ति में आएगा। तो इतना जो है समय नहीं है, कलयुग के लोगों की आयु बहुत अल्प है। तो चैतन्य भागवत इतना दिव्य ग्रंथ है कि इसको पढ़ने से इसको सुनने से तुरंत ही कोई व्यक्ति जो है भक्ति के मार्ग में आ जाता है, तुरंत ही आ जाता है। तो बहुत ही जो है दिव्य ग्रंथ है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का जो है ऐसा दिव्य वर्णन किया है कि कोई सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। उनकी लीलाओं का बहुत दिव्य वर्णन किया है, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर की जो है ऐसी कृपा है कि चैतन्य भागवत को पढ़ करके व्यक्ति जो है अल्प जीवन में, अपने अल्प आयु में ही वो जो है जीवन का जो चरम पुरुषार्थ है भक्ति कृष्ण प्रेम, तो वो जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है वृंदावन दास ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है, है ना। तो उन्होंने चैतन्य भागवत में अपना परिचय दिया है, तो ज्यादा परिचय नहीं दिया वृंदावन दास ठाकुर ने, अपना ज्यादा परिचय नहीं दिया। अपना परिचय दिया है तो अपनी माता नारायणी के पुत्र के रूप में अपना परिचय दिया है और नित्यानंद प्रभु के शिष्य के रूप में अपना परिचय दिया। तो वो परिचय बहुत थोड़ा सा है लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी गहराई है। ये जो है चैतन्य भागवत का अंत खंड है और अध्याय 6 और प्यार संख्या 121 है। इसमें वो कहते हैं सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात, है ना। तो इसमें अपना परिचय क्या देते हैं, वो सबसे पहले तो अपना परिचय देते हैं सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास, भगवान नित्यानंद के जो है सबसे अंतिम शिष्य वृंदावन दास हैं। अपना परिचय देते हैं, नित्यानंद प्रभु का सबसे अंतिम शिष्य हूं मैं, सर्वशेष भृत्य। तो शेष का मतलब दो अर्थ होते हैं शेष के। शेष का एक अर्थ होता है जो सबसे कम हो, जैसे आप भाग देते हैं विभाजित करते हैं तो बाद में शेष बचता है, तो शेष जो बचता है वो सबसे कम संख्या होती है, वही शेष बचता है, है ना। शेष या तो कभी जीरो ही होता है या जीरो से थोड़ा कम होता है, जीरो से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो जो है जो भाजक संख्या है तो उससे कम ही होता है। तो सर्वशेष का मतलब क्या है, जो सबसे छोटा, सबसे छोटा जो शिष्य है या सेवक है नित्यानंद प्रभु का वो वृंदावन दास है। तो अपना परिचय इस प्रकार से वो देते हैं विनम्रता के कारण कि जो है वृंदावन दास में जो है नित्यानंद प्रभु का सबसे छोटा सेवक हूँ, सबसे छोटा है ना। तो शेष का मतलब यही होता है कि जो बाद में बच जाए, है ना। जैसे आपने प्रसाद खाया, प्रसाद भोजन, तो शेष रहा तो उसको आप क्या करते हो, कहीं डाल देते हो, है ना, किसी उसमें डाल देते हो, जहाँ उच्छिष्ट डाला जाता है उसमें डाल देते हैं, तो उसको शेष बोलते हैं। तो शेष का मतलब है कि अब किसी काम का नहीं तो वो शेष शेष होता है ना। तो उस दृष्टि से जो है अपने को शेष बता रहे हैं कि मैं जो है नित्यानंद प्रभु के सेवकों में सबसे ज्यादा शेष हूँ, सबसे ज्यादा जो ऐसे नालायक हैं, मैं ऐसा मतलब सेवक हूँ नित्यानंद प्रभु का। और शेष का अर्थ जो है, जो दूसरा अर्थ है वो क्या है कि सर्वशेष, सबसे अंतिम, सबसे अंतिम शेष। जैसे शेष जी, तो शेष जी जो भगवान की शैया का कार्य करते हैं, हजार मुख वाले जो शेष जी हैं, तो उनको शेष क्यों कहा जाता है? शेष इसलिए कहा जाता है कि सृष्टि का जब प्रलय होता है, सृष्टि की जब प्रलय होती है तो केवल वही बचते हैं और सब सबका विनाश हो जाता है, केवल वही बचते हैं तो क्या कहे जाते हैं, शेष। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं कि संपूर्ण सृष्टि में जब सबका प्रलय हो जाता है तो कौन बचते हैं, जो शेष बचते हैं वही शेष, उन्हीं का नाम शेष है। तो बहुत बड़ी बात है शेष, है ना। तो इस तरह से भी जो है वृंदावन दास ठाकुर को का जो है परिचय प्राप्त होता है कि सबसे अंतिम, सबसे अंत में जो हैं है, और बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वो जो है सर्वशेष सेवक हैं, नित्यानंद प्रभु के सर्वशेष सेवक हैं। फिर दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात। तो माता जो है नारायणी, उनकी उनके गर्भ से जन्म है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं माता नारायणी के गर्भ से मैं जन्मा हूँ, माता नारायणी के गर्भ से मैं जन्मा हूँ। लेकिन वो माता नारायणी कौन है? वो भगवान चैतन्य की अवशेष पात्र है, अवशेष पात्र। तो माता नारायणी जो है वो इतनी भाग्यशाली थी, कन्या थी, कि 4 साल की अवस्था में ही भगवान चैतन्य ने जो है जब अपना जो है अपनी महिमा दिखलाई, श्रीवास पंडित के घर में जब अपनी महिमा दिखलाई, है ना, तो उसके माध्यम से ही कृष्ण प्रेम जो है उन्होंने दिखाया अपना, कि मैं कृष्ण प्रेम जो है किसी को भी दे सकता हूँ। तो जब भगवान चैतन्य प्रत्येक रात्रि में सब भक्तों को लेकर के श्रीवास अंगन में ही कीर्तन करते थे, तो पूरी रात कीर्तन करते थे श्रीवास अंगन में, और श्रीवास अंगन बहुत बड़ा, अभी भी बहुत बड़ा है श्रीवास अंगन, बहुत जगह है, है ना। तो वही एकमात्र ऐसा आंगन था जहाँ की बहुत अधिक संख्या में भक्त लोग आ जाएं और एक साथ कीर्तन करें। तो उस समय जो ईर्ष्यालु लोग थे, जो ईर्ष्यालु लोग थे, तो वो जो है कीर्तन से उनको जो है बड़ी बाधा होती थी और उनको जो है बहुत ज्वर होता था, ना बुखार, ईर्ष्या का बुखार। तो वो जो है उस कीर्तन के विरोध में बहुत सी बातें बोलते थे, और कुछ एक ऐसी भी चाल चली उन्होंने कीर्तन को बंद कराने के लिए, है कि एक गलत अफवाह फैला दी, गलत अफवाह फैला दी। क्या अफवाह फैला दी? कि मुसलमान जो है यहाँ के जो शासक हैं, और यहाँ के जो शासक स्थानीय शासक मुसलमान हैं, है ना, तो उनके पास तो खबर नहीं गई है, लेकिन जो मुसलमान राजा हैं जो है गंगा के पार, मुसलमान जो राजा हैं बादशाह है या हुसैन शाह है, तो उसको जो है खबर मिल गई है कि श्रीवास के आंगन में रोज रात में रात भर कीर्तन होता है, और वहाँ से जो है जो बादशाह है वहां से जो है नौकाएं आएंगी, सैनिकों की नौकाएं आएंगी, गंगा पार करेंगी और यहाँ जो है श्रीवास के घर में जो कीर्तन करने वाले हैं उनको पकड़ करके ले जाएंगे। और श्रीवास जी जो है बहुत चिंतित हो गए, सरल स्वभाव के थे और सरल स्वभाव का व्यक्ति है वो हर बात मान लेता है कोई कुछ भी बताए, हैं तो अपने अंदर छल कपट नहीं है तो दूसरे के अंदर भी कोई संभावना नहीं करते हैं कि छल कपट होगा। तो श्रीवास ठाकुर जो है सरल स्वभाव के थे, जो दूसरे भक्त हैं तो उन्होंने तो चिंता नहीं की है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ईर्ष्यालु लोग जो है कई प्रकार की चालें चलते हैं, लेकिन श्रीवास के हृदय में बड़ा जो है गहराई से भय समा गया है, क्योंकि घर भी उनका है और मुसलमान सैनिक अगर आए तो यहाँ और उनके ऊपर तो कोई है नहीं कि भाई केस करें, क्योंकि वही उन्हीं का ही शासन है, और वो लोग जो है अगर आए और घर को तोड़ेंगे फोड़ेंगे और घर के लोगों को या घर की स्त्रियों को जो है अगर दूषित करेंगे, है ना, तो कितनी बड़ी विपत्ति है ना। तो आप सोचिए कितनी बड़ी चिंता उनको हो गई कि उनके घर में भक्तों की दुर्दशा हो, या उनके घर में जो उनका घर भी इतना बड़ा था, सब भाई पूरे सब भाई जो है का परिवार इसी घर में था और उनकी पत्नियां और उनके बच्चे, बहुत बड़ा परिवार भी था और सेवकों का और सेविकाओं का भी बहुत बड़ा परिवार था, सब वहीं पर रहते और सबका पालन पोषण एक ही घर में होता था। तो श्रीवास पंडित को इतनी चिंता हो गई कि अगर मुसलमानों का अगर यहाँ आक्रमण हुआ तो जो है मेरे ही घर में भक्तों का भी बहुत बड़ा अपराध होगा, वो अपराध मुझे लगेगा कि मेरे घर में भक्तों के कीर्तन में जो है रोक लगाई जाएगी और उनको दंड दिया जाएगा, मारा पीटा जाएगा और घर की स्त्रियां और घर के जो है बच्चे और जो है युवक और वृद्ध सबके लिए जो है बहुत बड़ा जो है संकट है। तो श्रीवास ठाकुर जो है अपने घर में नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे, रात भर तो कीर्तन होता था और दिन में जो है क्या करते हैं नरसिंह भगवान की पूजा करते थे, क्योंकि यही विधि है कोई संकट आए तो भक्त लोग जो है क्या करते हैं नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वही जो है रक्षा करें है? और भगवान चैतन्य उस समय जो है वो तो अंतर्यामी है तो वो जान गए कि उनके भक्त का जो है हृदय में जो भय है तो अब उसको दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रकट करना पड़ेगा, अपने को जनाना पड़ेगा। तो भगवान चैतन्य अपने को जनाना नहीं चाहते थे, वो संकीर्तन आंदोलन को फैलाना चाहते थे लेकिन अपने को नहीं जनाना चाहते थे। लेकिन अब उन्होंने विचार किया कि कम से कम श्रीवास के घर में तो अपने को जनाऊं, क्योंकि श्रीवास के घर में जितने लोग रहते हैं सबके मन में बहुत चिंता, और श्रीवास के अंदर तो हजारों गुना चिंता है, तो चिंता को दूर करने के लिए भय को दूर करने के लिए अपने को जनाऊं है। और चूंकि भगवान चैतन्य जो है प्रेम पुरुषोत्तम है, प्रेम पुरुषोत्तम है तो विशेष जो है ये अवतार है, है? जिसमें कि किसी को भी प्रेम प्रदान करते हैं, है ना। तो दूसरे अवतारों में भगवान जो है वध करते हैं, असुरों का वध करते हैं और उनको इस प्रकार से मुक्ति देते हैं वध करके, लेकिन भगवान चैतन्य इतने उदार हैं, भगवान चैतन्य इतने उदार हैं है? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, महा उदार है? ऐसे भगवान चैतन्य को नमस्कार है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, है ना। तो भगवान चैतन्य जो है उस समय श्रीवास के घर में आए और श्रीवास से कहते हैं कि श्रीवास तुम जिसकी पूजा कर रहे हो उसको अपने सामने देखो, तुम अभी तक मुझे नहीं पहचान पाए है? मैं कितने सालों से यहाँ पर हूँ मौजूद हूँ और तुम मुझे पहचान नहीं पाए और अपना जो है चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया और जो है भगवान के सिंहासन में बैठ गए और जो है कहा कि सबको बुलाओ सब जो है मेरा दर्शन करें। तो घर में जो है जितने भी सेवक लोग थे और अपने परिवार के लोग थे, सबको बुलाया और सबने जो है भगवान का दर्शन किया। चतुर्भुज रूप में भगवान ने अपना दर्शन दिया और फिर उन्होंने जो है बात उठाई, क्योंकि भय और चिंता दूर करने के लिए भगवान जो है स्वयं श्रीवास से कहते हैं कि श्रीवास, सुना है कि राजा की जो है राजा के सैनिकों की नौका यहाँ आने वाली है और कीर्तन करने वाले भक्तों को पकड़ करके ले जाएगी, तो सुनो इस संबंध में मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। भगवान कहते हैं कि अगर वो लोग आएंगे तो सबसे पहले मैं ही राजा के पास जाऊँगा, और मैं राजा के पास जाऊँगा तो मुझे देख करके क्या राजा अपने सिंहासन पर बैठा रहेगा, क्या मैं उसको गिरा नहीं सकूँगा, है ना। तो भगवान का ये कहना है कि मैं उसको गिरा नहीं सकूँगा, मतलब क्या कि भगवान अगर उसको जो है अपना दर्शन देंगे तो भगवान के दर्शन से ही वो जो है क्या हो जाएगा, इतना हतप्रभ हो जाएगा कि गिर जाएगा सिंहासन से, या उसके अंदर इतना उल्लास होगा या कुछ ऐसा भाव आएगा कि उसके कारण ही वो गिर जाएगा। भगवान कहते हैं क्या मैं गिरा नहीं सकूंगा उसको सिंहासन से, और अगर वो बैठा रहा तो ये भी मैं चाहता हूँ, तो मैं उससे कहूँगा कि देख राजा, तू सच और झूठ को पहचान, सत्य और असत को तू पहचान, तेरे महल में जितने काजी मुल्ला हैं उन सबको तू बुला, और जितने तेरे महल में हाथी घोड़े हैं उनको तू बुला यहाँ पर, और अपने काजी मुल्लाओं से कहे कि अपने कुरान की आयतें पढ़ करके इन हाथी घोड़ों को प्रेम से रुलाएं। लेकिन उनके धर्म में इतनी शक्ति नहीं है कि ऐसा वो कर पाएंगे। फिर मैं कहूँगा राजा से कि राजा, तूने इन काजी मुल्लाओं की शक्ति देख ली, कितनी इनके अंदर शक्ति है, अब तुम मेरी शक्ति देख, और मैं उन सब हाथी घोड़ों को कृष्ण के प्रेम में रुलाऊंगा। और राजा है और जितने भी काजी मुल्ले हैं सबको जो है कृष्ण के प्रेम में रुलाऊंगा। तो भगवान तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन श्रीवास के मन में जो है अभी पूरी पूरी जो है क्या बात बैठी नहीं, क्योंकि जब तक ना जो है प्रत्यक्ष देखें तब तक तो पूरी तरह से विश्वास नहीं होता, और भगवान हृदय में बैठे हैं श्रीवास पंडित के, तो समझ रहे हैं कि श्रीवास के पंडित में जो है अभी हृदय में अभी जो है पूरी पूरा पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। तो भगवान कहते हैं अच्छा, तुम्हारे मन में अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी मैं करके दिखाता हूँ, आप करके यहाँ क्या क्या दिखा है कि हाथी घोड़ा तो यहाँ पर है नहीं, श्रीवास के घर में हाथी घोड़े तो है नहीं है कि कृष्ण प्रेम से उनको रुलाए। तो और अगर भक्तों को कृष्ण प्रेम से रुलाएं तो भक्त लोग तो सब कृष्ण प्रेम में है ही हैं पहले से, तो इसमें क्या विशेष बात हुई। तो अब उस समय कोई पशु पक्षी कुछ भी तो नहीं था, तो भगवान ने देखा 4 साल की नारायणी खेल रही थी, अबोध बालिका थी, 4 साल की नारायणी खेल रही थी, तो उसी को ही कहा कि इसको मैं कृष्ण प्रेम से रुलाता हूँ। और 4 साल की बच्ची नारायणी को जो है भगवान ने आदेश दिया कि नारायणी, तुम कृष्ण का नाम लेकर के तुम जो रो करके दिखा, और वो कृष्ण का नाम है हा कृष्ण हा कृष्ण ऐसे करती करती वो जो है मतलब एकदम क्रंदन करने लगी, और इतना उसके आंखों से आंसू गिरे कि पूरा आंगन भीग गया, कितना बड़ा आश्चर्य। तो वही जो है वृंदावन दास ठाकुर की माता बनी आगे चल करके, जो 4 वर्ष की अवस्था में थी जिस समय, तो वो जो है आगे चल करके उसने वृंदावन दास ठाकुर को जन्म दिया। तो 4 साल की अवस्था में ही भगवान चैतन्य ने जिसको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो भगवान चैतन्य की इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई ना भी जाने कृष्ण को ना भी जाने, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इनको भी नहीं जानता, तो भी जो है कृष्ण के नाम से जो है वो कृष्ण प्रेम वो प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान चैतन्य कैसी शक्ति। तो ये जो है मतलब वृंदावन दास ठाकुर की ये विशेषता है कि इनकी माता को भगवान चैतन्य ने सबसे पहले कृष्ण प्रेम प्रदान किया। हरि बोल। बाकी जितने भक्त हैं वो जीवन भर कृष्ण के बारे में ही श्रवण और कीर्तन करते रहे, तो उनको अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ तो उनको श्रवण कीर्तन की विधि से कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। लेकिन नारायणी जो छोटी सी बालिका थी उसको क्या पता, वो कुछ नहीं जानती है ना, तो उसको जो कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ वो केवल चैतन्य की कृपा से प्राप्त हुआ, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानती। तो ऐसा भी जो है मतलब आश्चर्य, ऐसी शक्ति श्री चैतन्य में है, तो वो जो है प्रेम पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने जो है नारायणी को कृष्ण प्रेम प्रदान करके ये विश्वास दिला दिया कि अगर मैं नारायणी को कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता हूँ तो ये मुसलमान हैं या जो भी हो, कोई भी हो जो विरोधी हो, क्या मैं उनको नहीं दे सकता कृष्ण प्रेम है? तो वो जो है कोई विरोधी रहेगा ही नहीं, मैं सबको कर सकता हूँ इस तरह से, है ना। तो ये जो है मतलब विशेष बात यहाँ जो है बताई जाती है, नारायणी जो है क्या है अवशेष पात्र। तो ये सबसे पहली घटना ये हुई। इसके बाद भगवान चैतन्य जब भी जो है अपना ईश्वर भाव में आते थे, जब भी ईश्वर भाव में आते थे तो अपना उच्छिष्ट जो है सबको दिया करते थे। तो जब श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था तो जब भक्त के भाव में होते थे भगवान चैतन्य तो दूसरे भक्तों के पैर छूते थे, दूसरे भक्तों के पैर की धूल अपने सिर में रखते थे, भक्तों को बड़े लज्जित होते थे। लेकिन जब ईश्वर भाव में आते थे तो सिंहासन पर बैठ जाते थे, भगवान के सिंहासन पर बैठ जाते थे और कहते थे कि सब लोग आओ और मुझसे जो है प्रसाद लो, तो अपना उच्छिष्ट सबको देते थे और जो है अपनी स्तुति भी कराते थे। तो उस समय भी जो है जब शेष बच जाता था, भगवान का उच्छिष्ट का जो बच जाता था तो काफी मात्रा में बच जाता है, वो सब नारायणी को देते थे। तो नारायणी क्या हो गई, अवशेष पात्र। अवशेष पात्र का मतलब क्या है कि जब आप भोजन करते हैं और जो बच जाए तो एक पात्र में डालते हैं, उसको अवशेष पात्र बोलते हैं। ये अवशेष पात्र है, ये जूठन का बर्तन है ये। तो नारायण को ही अपना अवशेष पात्र बनाया था भगवान चैतन्य ने, कितना सौभाग्य है। और नारायणी के सौभाग्य को देख करके भक्त लोगों को के आंखों से आंसू निकलते थे कि कितने भाग्यशालिनी ये लड़की है कि भगवान जो है अपना जितना भी बचता है सबसे बाद में वो इसको ही देते हैं। तो ये एक बर्तन है, ये भगवान का बर्तन है, कि जो बचेगा वो उसी में डालें, तो वो उसके ही मुंह में जाता था अवशेष पात्र। तो वृंदावन दास ठाकुर अपना परिचय देते हैं, अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात। तो इनकी जो है माता जो नारायणी है, तो उसके जो पिता थे वो श्रीवास के बड़े भाई थे, उनका नाम था श्री नलिन, है ना। और उनके जो पिता थे, पांचों भाई थे, ये श्री नलिन सबसे बड़े थे, फिर श्रीवास और फिर श्री राम, श्रीपति, श्री निधि, इस तरह से पांच भाई थे, है ना। तो जो श्री नलिन थे तो उनकी पुत्री जो है जो नारायणी थी कुमारहट्ट में वो रहते थे, श्री नलिन कुमारहट्ट में रहते थे और श्रीवास मिला करके जो चार भाई थे ये नवद्वीप में रहते थे, है ना। तो कुमारहट्ट में ये कन्या नारायणी को कुमारहट्ट में जन्म दे करके संसार में ना रहे, है ना। तो उनके छोटे भाई श्रीवास पंडित ने नारायणी उसकी माता को अपनी देख रेख में नवद्वीप में रखा, तो नारायणी की माता का भी कुछ दिनों में परलोक गमन हो गया, है ना। और महाप्रभु जब गया धाम से लौटे थे तो उस समय नाम प्रचार के लिए श्रीवास पंडित के जो है घर में उनके आंगन में अपने अंतरंग भक्तों को लेकर के रात्रि के समय उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते थे, है ना। तो फिर ये सब मैंने बताया कि उन लोगों ने जब ऐसी चाल चली विरोधियों ने और श्रीवास पंडित को जो भय पैदा हुआ, तो श्रीवास पंडित के जो है घर में भगवान चैतन्य ने अपना जो है पूर्ण जो रहस्य है वो प्रकट कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने अपना ये जो गुप्त रहस्य बताया कि वे स्वयं जो है साक्षात परमेश्वर हैं, तो ये जो है जो बात है वो श्रीवास पंडित के घर के अंदर ही सीमित रही। भगवान ने मना कर दिया कि और किसी को नहीं बताना, तो घर के बाहर जो सामान्य लोग थे वो चैतन्य महाप्रभु को भी सामान्य समझते थे, है ना। तो फिर नारायणी को जो है जब सब प्रसाद मिलता था, भगवान का उच्छिष्ट मिलता था, तो सब भक्तों ने परम हर्षित होकर नारायणी को जो है नारायणी का गुणगान किया, और वो बहुत प्रसन्न होकर प्रभु का प्रसाद पाती थी। तो सब वैष्णव जो है बोलते थे कि धन्य है ये बालिका, परम धन्य है इसका जीवन, ऐसा सब भक्त लोग कहते थे और नेत्रों से आंसू बहाते थे, हर्ष के आंसू, सब भक्तों के नेत्रों से हर्ष के आंसू बहते थे, है ना। और जब नारायणी सब प्रसाद पा चुकी तो भगवान बोले, नारायणी कृष्ण प्रेम के आनंद में रो करके तो दिखा। तो ऐसा सुनते ही नारायणी कृष्ण कृष्ण बोल करके नाचने और रोने लगती थी। तो आज भी वैष्णव मंडली में ये ध्वनि गूंजती सुनाई देती है। ये चैतन्य भागवत की एक और प्यार है, ये है मध्य खंड अध्याय 10 और प्यार संख्या 294। अद्यापि है वैष्णव मंडले जार ध्वनि गोरांगेर अवशेष पात्र नारायणी। तो सब भक्त लोग जो है क्या बोलते थे, वैष्णव मंडली में आज भी ये ध्वनि जो है सुनाई पड़ती है, आज भी बोला जाता है क्या, गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी, कि भगवान गौरांग के अवशेष की पात्र कौन है, नारायणी है। तो ऐसी महाभाग्यवती महाप्रभु की कृपा पात्रा नारायणी जिनके परम सौभाग्यवान पुत्र हैं कौन, वृंदावन दास ठाकुर। हरि बोल। तो जो नारायणी देवी हैं ये तो बहुत ही भाग्यशालिनी है। तो ब्रज लीला में ये जो नारायणी है ये क्या थी, नंद के महल में एक क्या थी, सेविका, नंद के महल में सेविका थी, है ना। और इनका नाम था किलिम्बिका, अंबिका और किलिम्बिका ये दो बहनें हैं जो कि नंद के भवन में सेवा करती थी और एक प्रकार से धात्री का कार्य करती थी। माता यशोदा तो जननी माता हैं कृष्ण की, लेकिन धाय माता भी, सात प्रकार की माताओं में धाय माता भी तो एक होती है ना। तो जो नारायणी थी ये धाय माता में से एक थी, धाय माताएं बहुत सी थी, नंद के भवन में रहती थी, है ना। तो उनमें से अंबिका बड़ी बहन थी और किलिम्बिका छोटी बहन थी, ये दोनों धाय थी, है ना। तो ये जो है किलिम्बिका थी। तो गौर गणोदेश दीपिका का 43वां श्लोक है, इसमें बताया गया है, अंबिकाया सुसायासीन नामनी श्रील किलिम्बिका कृष्णोच्छिष्टम प्रभंजाना सेयम नारायणी मता। तो ये क्या बताया गया है कि अंबिका की छोटी बहन किलिम्बिका नंद के महल में जो कि कार्य करती थी, और ये किलिम्बिका का जो है क्या कार्य था, कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना। तो कृष्ण जब छोटे थे नंद के भवन में तो खाते थे, तो बहुत फेंकते भी थे जैसे बच्चे तो बहुत खाते थे और बहुत फैलाते भी थे, फेंकते थे। तो किलिम्बिका का जो है यही कार्य था, यही सेवा थी, है कि सफाई करना, साफ करना। तो जितने कृष्ण के जो है जो उच्छिष्ट कण थे होते थे वो इकट्ठा करती थी, तो वही उसका भोजन होता था। तो पिछले जन्म में भी कृष्ण का उच्छिष्ट ही खाती थी, है ना। लेकिन कृष्ण से अवस्था में बड़ी थी, कृष्ण की एक प्रकार से माता जैसी थी। लेकिन यहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु के लीला में वही कृष्ण की जो माता जैसी थी, तो वो जो है अब जो है चैतन्य महाप्रभु की जो है ऐसे छोटी छोटी बच्ची के समान है। यहाँ उसकी अवस्था बहुत छोटी है, एक बच्ची के समान है, है ना। लेकिन कार्य फिर भी वही है, वो बालक कृष्ण का उच्छिष्ट खाती थी और यही कार्य था उसका, उच्छिष्ट खाना, कृष्ण का जो है भोजन का उच्छिष्ट खाना। और यहाँ भी नारायणी का कार्य है क्या, चैतन्य के भोजन का उच्छिष्ट खाना, यही जो है कार्य था। तो पिछले जन्म की जो सेवा थी वही जो है उसकी जन्म जन्म की सेवा है, है ना। तो ये बताया गया है ना। यथा समय यौवन अवस्था जब प्राप्त हुई तो श्रीवास पंडित नारायणी का विवाह कुमार हट्टवासी एक कुलीन विप्र श्री वैकुंठ दास के साथ कर दिया। तो श्रीवास पंडित ने उसका विवाह कर दिया। चैतन्य महापुरुष संन्यास ले चुके हैं, क्योंकि जब नारायणी 4 वर्ष की थी तो चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन की लीला शुरू की थी नवद्वीप में श्रीवास पंडित के घर में। और फिर 1 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद ही नारायणी को जब यौवन अवस्था प्राप्त हुई तो श्रीवास ने उसका विवाह किया। तो कुमारहट्ट में विवाह किया। तो कुमारहट्ट में ही इसके माता पिता रहते थे पहले, है ना। तो कुमारहट्ट में वैकुंठ दास नाम के एक जो है ब्राह्मण थे, है? उनके साथ विवाह किया और समय पाकर पाकर गर्भवती हुई और 4-5 महीने का गर्भ था कि वैकुंठ दास का वैकुंठवास हो गया। तो पिता का वैकुंठवास हो गया, वैकुंठ दास नाम था, वैकुंठवास हो गया, है ना। तो माता के गर्भ में 4-5 वर्ष की जो है ये थी जिस समय। तो फिर नारायणी देवी ने पुत्र को जन्म दिया, नारायणी देवी ने पुत्र को जन्म दिया। तो ये वृंदावन दास ठाकुर ही जो है थे, जो कि इनका जन्म हुआ नारायणी देवी से। तो जन्म का जो वर्ष है वो निश्चित नहीं है, लेकिन 1519 के आसपास इनका जन्म हुआ, है ना। तो आज के दिन उनका जन्म है, 1519 निर्धारित होता है। तो बाल्यकाल से ही वृंदावन दास में असाधारण गुण दिखने लगे, असाधारण गुण। तो ऐसा होता है, कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। कोई पेड़ है तो अगर कोई विशेष पेड़ है तो उसकी पहचान तो तब होगी जब फल उसके होंगे और फल खा करके कोई मानेगा भी ये पेड़ विशेष है। लेकिन फल तो शुरू में होते नहीं, तो बिरवान में छोटा सा पौधा होता है, लेकिन तो भी उसका संकेत मिल जाता है कि ये एक विशेष पेड़ है। कैसे? उसके पत्ते चिकने, चिकने पत्ते देख करके लोग सोच सकते भी इसमें जो है विशेषता है, आगे चल करके जब फल होंगे तो वो कितने अच्छे होंगे। अभी से ये फल इतने पत्ते इतने चिकने हैं, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर का जो जन्म हुआ तो इनके जो है जो गुण है वो बड़े दिव्य थे, है? तो इसमें बताया गया है कि अनाथनी नारायणी पुत्र को लेकर दरिद्र ससुराल में विपदा में पड़ गई, बड़े कष्ट से दिन काटने लगी, है ना। तो क्या होता है कि अगर पत्नी जो है गर्भवती हो और पति की मृत्यु हो जाए, है? तो फिर ससुराल में ही कई प्रकार की बातें जो है चलने लगती हैं, कई प्रकार की बातें चलने लगी, है ना। मतलब क्या बोलने लगते हैं, है? कि इसके ही जो है दुर्भाग्य के कारण यही दुर्भाग्य लेकर के आई, अपने पति को खा गई है, क्या 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 बोलते हैं, है ना। तो उसी के प्रति जो है उसके ऊपर ही सब दोष डाला जाता है, है? तो वो क्या हो गई, बड़ी विपत्ति में पड़ गई, ससुराल में बड़े कष्ट से दिन काटने लगी, है ना। और वो बेचारी क्या कर सकती, उसको सुनना ही पड़ेगा और कुछ नहीं बोल सकती, तो बड़े कष्ट से दिन काटने लगी। उस समय जो है भगवान ने बड़ी रक्षा की उसकी। तो हुआ क्या कि नवद्वीप के अंतर्गत गंगा के पश्चिम पार मामगाछी गोद्रुम द्वीप में महाप्रभु के परम भक्त वासुदेव दत्त ने एक मंदिर स्थापित किया था। तो हुआ क्या कि भगवान चैतन्य ने जब संन्यास ले लिया तो श्रीवास पंडित भी फिर नवद्वीप को छोड़ करके चले गए, कुमारहट्ट में चले गए। क्यों? क्योंकि जितने भी नवद्वीप वासी थे भगवान चैतन्य का दर्शन हमेशा प्राप्त करते थे जब भगवान चैतन्य थे, और जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो फिर यही निश्चित हो गया कि संन्यास लिया तो नवद्वीप में तो आएंगे नहीं, और कहीं जाएं ये नवद्वीप में नहीं आएंगे। तो ऐसा जो है कुछ नियम होता है कि सन्यासी जो है उस स्थान में नहीं जाएगा जहाँ का वो अपना निवासी है। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ नहीं आएंगे, तो श्रीवास पंडित को जो है अब चैतन्य महाप्रभु दर्शन कैसे होंगे, और उनकी विरह में जो है वो बड़ी पीड़ा होती थी, तो इसलिए श्रीवास पंडित कुमार हट में आ गए, है ना। और अद्वैताचार्य हैं, उनका घर दूसरा घर शांतिपुर में था, तो नवदीप का घर छोड़ करके शांतिपुर में चले आए, है ना। तो इस तरह से नवदीपवासी जितने भी थे जो भगवान चैतन्य की संगति करते थे और नवदीप में रहते थे, तो वो लोग जो है फिर इधर उधर चले गए नवदीप को छोड़ करके। तो जो वासुदेव दत्त थे तो उन्होंने भी एक मंदिर स्थापित किया था वहाँ गोत्रम द्वीप में, ये सोच करके कि जब भगवान चैतन्य नवदीप में रहते हैं तो नवदीप में जो है उनकी लीलाएं देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए वो जो है वहाँ पर ठहर सकते हैं और इस तरह से भगवान की संगति प्राप्त होगी। तो मंदिर स्थापित किया था और वे स्वयं कांचड़ा पाड़ा गांव में रहते थे। तो महाप्रभु की नवदीप लीला के समय प्रभु के निकट वास करने के लिए उन्होंने वहाँ मंदिर में स्थापना की थी, मंदिर की स्थापना की थी। और बाद में जब भगवान ने संन्यास ग्रहण कर लिया तो फिर वो वहाँ जा नहीं सकते, अब उनको जो जाने का कोई मतलब नहीं है, तो वो मंदिर जो है खाली पड़ा था। तो श्रीवास पंडित भी और सब भक्त लोग संन्यास लीला के बाद कुमारहट्टी में आकर रहने लगे। तो श्रीवास के साथ बहुत मित्रता थी वासुदेव दत्त की, अतः उस नाते से नारायणी देवी को उन्होंने उस मंदिर की सेवा का भार सौंप दिया। तो नारायणी का ये बड़ा भारी सौभाग्य था कि वो मंदिर जो है वो नारायणी देवी को जो है सेवा करने की मिल गया, है ना। तो अब वो दुर्भाग्य से बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया, अपने पुत्र को लेकर के वृंदावन दास को लेकर के नारायणी वहाँ पर आ गई, है ना, और मामगाछी में रहने लगी अपने पुत्र वृंदावन दास के साथ में। और नारायणी की जो है सेवा इतनी जो है मंदिर में इतनी बढ़िया सेवा होती थी कि सब लोग जो है प्रसन्न होकर के बहुत चढ़ावा देते थे, बहुत चढ़ावा देते थे। तो उस समय क्या था कि नारायणी की सेवा प्रसिद्ध है वहाँ पर, कि नारायणी जो है भगवान को भोग लगाती थी, इतना भोग लगाती थी, तो जो है बहुत अधिक मात्रा में खीर का भोग लगता था, फिर बांटी जाती थी। इस तरह से नारायणी का जो है अब क्या हो गया, बड़ा सम्मान हो गया, बहुत महत्व बढ़ गया है। और वृंदावन दास जो है वहीं पर रहते थे, छोटे से बच्चे थे, तो मामगाछी विद्या का केंद्र था, तो बहुत पंडित विद्वान वहाँ रहते थे। यथा समय वृंदावन दास ने बाल्य विद्या और संस्कृत विद्या ग्रहण की और थोड़े दिनों में ही सर्वशास्त्र पारंगत हो गए, अत्यंत प्रतिभाशाली थे। तो ये जो है मतलब बचपन से ही ऐसा लक्षण देखा जाता है, कोई बहुत बड़ा अगर विद्वान आगे चल करके बनेगा तो बचपन में ही जो है उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं कि बड़ी जल्दी उसको याद हो जाता है, बड़ी जल्दी वो जो है आगे बढ़ जाता है विद्या में। तो वृंदावन दास ही हैं, है? वो तो व्यास जी हैं, व्यास देव के अवतार ही हैं, तो बचपन से ही जो है उनको शिक्षा जो है पूरी पारंगत हो गए। और भगवान चैतन्य की विशिष्ट पात्रा नारायणी देवी के गर्भ से चूँकि इनका जन्म हुआ था, तो भक्तों की संगति भी मिली, शास्त्रों का अध्ययन भी हुआ, जिसके फलस्वरूप ये जो है संसार से जो है विरक्त हो गए। और इसी समय माता नारायणी का भी परलोक गमन हो गया, तो वृंदावन दास जो है और ज़्यादा विरक्त हो गए, अब बिल्कुल विरक्त हो गए। तो इन्होंने संन्यास नहीं ग्रहण किया, तो फिर इन्होंने ना संन्यास ग्रहण किया ना विवाह किया, है ना। तो उनको क्या कहा जाएगा, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो कुछ हम लोगों में से कुछ भक्त जो है कैसे होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, संन्यास भी नहीं लेते, विवाह भी नहीं करते, है ना। तो इन्होंने भी इसी प्रकार से किया, है ना। तो नित्यानंद प्रभु जो है उस समय नित्यानंद प्रभु थे, हैं, और संपूर्ण जो है गौड़ देश में नाम प्रेम प्रदान कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों का इन्होंने आश्रय प्राप्त किया और नित्यानंद प्रभु ने इनको दीक्षा प्रदान की और शिष्य रूप में स्वीकार किया। और जो है चूँकि इनके शरीर में कुसुमा पीड़ नाम का सखा भी था, तो सख्य भाव का भी विशेष आवेश रहता था इनके अंदर। तो नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे और बहुत कृपा करके नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी श्री चैतन्य चरित्र लिखने के लिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र इन्होंने लिखा और इसमें यह आता है चैतन्य भागवत ने अंतर्यामी नित्यानंद बलि लाकौतु के चैतन्य चरित्र के लिखी थे पुस्तके। नित्यानंद प्रभु जो है अंतर्यामी है तो कौतुक में ही मतलब बोला ऐसे, जैसे बातों बातों में एकदम बात आ जाती है तो उन्होंने कौतुक में ही मतलब बोला। क्या बोला कि चैतन्य चरित्र किसी लिखी थे पुस्तके, चैतन्य महाप्रभु चरित्र कुछ पुस्तक के रूप में लिखो, है ना। तो भगवान चैतन्य के संबंध में कोई पुस्तक उस समय नहीं लिखी गई जब भगवान चैतन्य थे, क्योंकि भगवान चैतन्य अपने अवतार को नहीं जनाना चाहते हैं जब तक वे रहते हैं, जब तक उनका अवतार काल होता है उस समय तक वो अपने अवतार को नहीं जनाना चाहते, सामान्य लोगों में नहीं जनाना चाहते, अपने भक्तों में कभी बताते हैं, वो कभी भक्त भाव में रहते हैं कभी ईश्वर भाव में रहते हैं, तो भक्तों के जो है सर्किल में तो जो है अपना तत्व बता देते हैं, लेकिन सामान्य जनता में वो नहीं चाहते कि कोई पुस्तक लिखी जाए कुछ किया है। जब भगवान चैतन्य की लीला समाप्त हो गई तब नित्यानंद प्रभु जो है इनको आज्ञा देते हैं और हंस करके बोले, क्या बोले, चैतन्य चरित्र किसी लिखी थे पुस्तके, कुछ चैतन्य चरित्र लिखो। नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञा करी शरे सूत्र मात्र लिखी आमी कृपा अनुसारे। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की आज्ञा को सिर में धारण करके मैंने कुछ जो है सूत्र मात्र लिखी है, सूत्र मात्र पुस्तक जो है सूत्र मात्र लिखी है, मतलब वृंदावन दास ठाकुर संतुष्ट नहीं है। चैतन्य भागवत में जो इनका चैतन्य का चरित्र लिखा है उससे वृंदावन दास ठाकुर संतुष्ट नहीं है कि मैंने सूत्र मात्र ही लिखा है। ताहार आज्ञा आमी कृपा अनुरूपे किछु मात्र सूत्र आमी लिखी रहे पुस्तके। तो भगवान चैतन्य की आज्ञा से मैंने जो है उनकी कृपा के अनुसार ही जो है कुछ सूत्र मात्र लिखा है। सही प्रभु कलियोगी अवधूत राय सूत्र मात्र लिखी आमी ताहार आज्ञा, उनकी आज्ञा से मैंने सूत्र मात्र लिखा है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि वृंदावन दास ठाकुर जगह जगह चैतन्य भागवत में ये बताते हैं, ये बताते हैं कि आगे चलकर के व्यास जी इन कथाओं का वर्णन करेंगे और विस्तार में, ये जो है जगह जगह आता है। जैसे कि आदि खंड का पहला अध्याय है प्यार संख्या 161 है, इसमें वो कहते हैं शेष खंडे चैतन्य अनंत विलास विस्तरिया वर्णित आछेन वेद व्यास। इसका अर्थ ये है कि शेष खंड में गौरांग की असंख्य लीलाओं का वर्णन है, उनका विस्तार करने के लिए वेद व्यास ही समर्थ हैं। तो भगवान चैतन्य की लीलाओं का वर्णन चूँकि चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाद ही है, हरि बोल, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाद ही लिखी जाएंगी, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले जो वेद व्यास थे उन्होंने पुराणों में चैतन्य महाप्रभु लीलाएं नहीं लिखी, थोड़ा थोड़ा संकेत दिया, चैतन्य महाप्रभु के अवतार का थोड़ा थोड़ा संकेत दिया लेकिन लीलाओं का वर्णन नहीं किया, है ना। तो भगवान चैतन्य अपने अवतार को तब तक गुप्त रखना चाहते हैं जब तक उनका अवतार पूरा ना हो जाए, है ना। तो अब जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार पूरा हो गया और अपने परम धाम में चले गए तो फिर नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से चैतन्य चरित इन्होंने लिखा, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, है ना। तो अब वो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जो संकेत दे रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि आगे दूसरे व्यास होंगे, क्योंकि प्रत्येक द्वापर के अंत में एक व्यास होते हैं। तो अभी ये 28वां कलयुग चल रहा है, इसके पहले 28वां द्वापर था, 28वें द्वापर के अंत में जो व्यास हुए उन्होंने 18 पुराण लिखी, तो उन पुराणों में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी लिखा, तो सभी पुराणों में मिलता है, श्री राम का भी चरित्र लिखा, सब पुराणों में मिलता है, है ना। तो जब भगवान का अवतार हो जाता है तो फिर पुराणों में उनका चरित्र लिखा जाता है। तो अब आगे जो है जब 29वां द्वापर आएगा, यानी पूरा एक चारों युगों का चक्र पूरा हो जाएगा, समझो कि 43,20,000 साल के बाद फिर से जो द्वापर का अंत आएगा, तो समय जो व्यास होंगे है ना, तो दूसरे व्यास होंगे वो फिर 18 पुराण लिखेंगे, वो फिर 18 पुराण लिखेंगे। तो जब वो 18 पुराण लिखेंगे तो उन पुराणों में चैतन्य महाप्रभु का चरित्र विस्तार से आएगा। हरि बोल। तो ये संकेत जो है ये वृंदावन दास ठाकुर दे रहे हैं कि जो हमारे ये वृंदावन दास ठाकुर जब व्यास रूप में थे तो चैतन्य चरित्र नहीं लिख सकते थे, ये चैतन्य अवतार के बाद ही जो है उनका जो है चरित्र लिखा जा सकता है ना। तो अब ये 28वें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, तो अब 29वां कलयुग जब होगा और उसके पहले 29वां द्वापर का अंत होगा, तो व्यास जी जो है 18 पुराणों में चैतन्य चरित्र भी लिखेंगे। तो चैतन्य श्री कृष्ण का चरित्र जो है 18 पुराणों में मिलता है, सभी पुराणों में मिलता है कृष्ण का चरित्र, और अगर ऐसे मिला करके देखा जाए तो बहुत विस्तृत है। श्री राम का भी चरित्र मिलता है तो बहुत विस्तृत मिलता है ना। ये चैतन्य महाप्रभु का चरित्र इस समय नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि वो पुराण जो है क्या चैतन्य अवतार से पहले लिखे गए थे 18 पुराण, तो इसलिए वो जो चरित्र है चैतन्य महाप्रभु का चरित्र गुप्त रखा गया। अब जैसे कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकेतन प्रयजंती ही सुमे दशा है, तो ये श्लोक भागवत में मिलता है और उसमें चैतन्य महाप्रभु का संकेत है ना। लेकिन आचार्यों ने भी, चैतन्य महाप्रभु पहले जो आचार्य हुए उन्होंने भी इसको छिपाया, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है कि चैतन्य अवतार के पहले चैतन्य अवतार को प्रकाशित किया जाए, है ना। तो इसलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी इसकी व्याख्या जो है उस प्रकार से कर दी है कि चैतन्य अवतार जो है वो गुप्त रखा गया। लेकिन आगे चल करके सनातन गोस्वामी है ना और जो दूसरे आचार्य हैं, तो उन लोगों ने फिर जो है इसकी असली व्याख्या बताई कि ये कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, हाँ, ये जो श्लोक है ये पूरा पूरा चैतन्य महाप्रभु के संबंध में है ना। तो व्यास जी जो है ये वही कृष्ण लीला में जो व्यास जी थे वही चैतन्य लीला में कौन है, वृंदावन दास ठाकुर, और आज उनका आविर्भाव दिवस है। ठीक है, तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, हैं? तो अभी हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कोई चर्चा, कोई प्रश्न। जी इनको माइक दीजिए, माइक 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 चालू। अब बोलिए,
हर कलयुग में आते हैं।
इनका प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में आते हैं? नहीं, चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते। अच्छा प्रश्न है ये, चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है हर कलयुग में नहीं होता है ना। हर कलयुग में जो है जो अवतार होता है वो कलयुग के युग धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये बताया गया गौर नारायण के नाम से भगवान का अवतार होता है हर कलयुग में और युग धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान चैतन्य का जो अवतार होता है वो उसी कलयुग में होता है जिसके पहले वाले द्वापर में कृष्ण का अवतार हो चुका है। तो कृष्ण का अवतार एक बार होता है, है? ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण का अवतार एक बार होता है ना। तो वो चैतन्य का अवतार अलग नहीं है, कृष्ण के अवतार से अलग नहीं है, क्योंकि भगवान चैतन्य का जो अवतार हुआ वो कृष्ण के अवतार का ही जो कार्य रह गया वो पूरा किया है ना। तो जो कृष्ण प्रेम है जो नहीं मिला कृष्ण के अवतार में, कृष्ण प्रेम नहीं मिला है लोगों को, तो वो कृष्ण प्रेम जो है प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। तो इसलिए प्रत्येक कल्प में सातवां मन्वंतर का 28वां द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार होता है। ठीक है, और फिर उस 28वें द्वापर के बाद जो 28वां कलयुग होता है उसमें चैतन्य का अवतार होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है कि विशेष रूप से होता है कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है जी। जी और कोई प्रश्न है किसी का? माता जी इनको इनको माइक दीजिए। ये काम नहीं कर रहा माइक, ऑन करो। आप ऑन करके दो ना उनको।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो जैसे त्रेता युग सतयुग, तो ये जो चारों अवतार होते हैं वो एक ही मन्वंतर में होते हैं भगवान
नहीं,
राम
नहीं, कृष्ण नहीं, 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 नहीं ऐसा नहीं है। जो एक मन्वंतर में 71 बार चारों युग बीतते हैं, 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर कली, ये चतुर्युग, ये जो चक्र है चारों युगों का चक्र 71 बार बीतता है एक मन्वंतर में।
नहीं आपने बताया ना, जैसे भगवान कृष्ण होते हैं जिस द्वापर में, उसी के बाद चैतन्य महाप्रभु होते हैं। हाँ। और उससे पहले जो सतयुग होता है उसमें भगवान राम का अवतार
नहीं,
नहीं
भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ।
त्रेता युग में
तो भविष्य पुराण में तो ये बताया गया कि वो 24वें त्रेता में राम का अवतार होता है।
अच्छा, और
24वें। और देखिए अब कितने सतयुग बीत चुके हैं, ठीक है,
अब कितने अलग 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 है।
1000 बार जो है चारों युग बीतते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, 1000 बार चारों युग बीतते हैं। तो हमारे शास्त्र में इतना सब जो है नहीं विवरण मिलता कि भी कौन से युग में कौन सा अवतार हुआ है भगवान का, अवतारों की कोई संख्या नहीं है। अभी हम कुछ अवतार गिनते हैं तो हम सोचते हैं भाई इतने अवतार हैं, है ना। कोई अवतार है अगर श्रीमद् भागवत में तो बस इतने अवतार हैं, 24 अवतार हैं, 24 ही अवतार में, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान के अवतार असंख्य हैं, ठीक है ना।
प्रभु जी जो ये कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितमृत की रचना की तो उसमें भी तो भगवान चैतन्य का चरित्र के बारे में बताया है ना।
चैतन्य कृष्णदास कविराज ने जो रचना की है, अच्छा प्रश्न है माता जी का। तो कृष्णदास कविराज ने जो चैतन्य चरितमृत की रचना की है उसकी आवश्यकता पड़ गई। उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य की लीला का वर्णन किया तो शैशव लीला जो बाल लीलाएं उनका बहुत विस्तार से वर्णन किया, लेकिन फिर जो अंत्य खंड है अंत्य खंड में उनकी जो लीलाएं हैं उन्होंने फिर संक्षिप्त कर दी, क्योंकि उस समय क्या था ग्रंथ विस्तार का बहुत भय रहता था, क्योंकि पहले ग्रंथ इस प्रकार से बाइंडिंग नहीं होते थे, ऐसे बाइंडिंग नहीं होती थी, है ना। तो अभी तो क्या है कई पार्ट में किताबें लिखी जाती हैं, पहले बाइंडिंग नहीं होती थी, तो फिर उसमें क्या है कि एक पुस्तक का रूप जो है देना बड़ा मुश्किल होता था, ना छपाई होती थी, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रंथ विस्तार का बड़ा भय रहता था। तो वृंदावन दास ठाकुर ने ग्रंथ विस्तार के भय से चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाएं जो है वो मतलब संक्षिप्त कर दें, ज़्यादा नहीं लिखी। तो भक्तों को जो है बड़ी मतलब आवश्यकता लगती थी कि चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाएं, जबकि बहुत वर्षों तक हुई चैतन्य महाप्रभु की, जगन्नाथपुरी में 18 साल तक रहे, तो जो है उनको नहीं सुनने को मिली। तो फिर कृष्णदास कविराज को उन्होंने आज्ञा दी और कृष्णदास कविराज ने सबसे आज्ञा मांगी, तब चैतन्य चरितामृत लिखा। तो उन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक चैतन्य चरितामृत की रचना की कि जो जो लीलाएँ वृंदावन दास ठाकुर ने लिख दी हैं विस्तार से लिख दी हैं उनको ना लिखें या फिर संक्षेप में लिखें, है ना। वृंदावन दास ठाकुर ने जो लीलाएँ छोड़ दी तो उनको जो है उन्होंने फिर लिखा है। तो अपने को जो है बहुत ही नीचा मानते हुए कृष्णदास कविराज ने जो है चैतन्य चरितामृत लिखा है कि चैतन्य भागवत को ही पढ़ाए, उनका एक कहना है कि चैतन्य भागवत को ही आप लोग पढ़िए और मैं तो जो है कुछ उनका ही उच्छिष्ट लिख रहा हूँ। तो चैतन्य चरितामृत बहुत दिव्य ग्रंथ हो गया, क्योंकि इतनी जो है विनम्र भावना के कारण जो है उस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है उसका बहुत महत्व बढ़ गया कृष्णदास कविराज के ग्रंथ का। बहुत चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में ज़्यादा सिद्धांत की चर्चा है और सिद्धांत की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजकल लोग कुतर्क बहुत करते हैं और जो है वो फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कुतर्क उनके दिमाग में बहुत कुतर्क आते हैं। तो उन कुतर्कों को निरस्त करने के लिए कृष्णदास कविराज ने जो है वो भक्ति के सिद्धांत की जो है विशेष स्थापना की है। तो चैतन्य चरितामृत इसलिए बहुत उपयोगी है, और प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत का जो है विशेष व्याख्या लिखी, टीका लिखी, तो उसका जो है इस समय के लिए बहुत उसका उपयोग है। लेकिन जो भक्त हैं और चैतन्य महाप्रभु के जीवन लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं, तो उसमें जो है क्या है, चैतन्य भागवत विशेष महत्व है। ठीक है, धन्यवाद। श्रील वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।